الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، بحمد الله یہ آج دوسری مجلس ہے جس میں ہم بحث علم اخلاق و علم فتوت کو آگے بڑھا رہے ہیں. وعدہ فی الاصل علم فتوت ہی کے عنوان سے تھا، لیکن چونکہ یہ اصطلاح فتوت کی اصطلاح عام نہیں ہے، اور پھر فتوت کے مباحث بہت بلند مباحث ہیں اور علم اخلاق کے باقی مبادیات اور مبانی اور مسائل اور مباحث سب تقریباً علم فتوت کے مقدمے میں آ جاتے، اس لیے ہم نے یہ عنوان قائم کیا تاکہ عنوان مانوس بھی ہو اور عنوان ذرا ہمگیر بھی ہو. گزشتہ مجلس میں ہرچند کے تمہیدی مباحث تھے، لیکن مباحث اہم تھے. آج بھی ایک مختصر سی تمہید سے اور گزریں گے ہم، اور وہ یہ ہے، چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جب عنوان میں علم شامل ہے، علم، علم اخلاق، علم فتوت، تو جو اس علم کو حاصل کرنے کے علمی شرائط ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں، اور جو عملی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں. یعنی اگر تعلیمی نقطہ نظر سے، خالص تعلیمی نقطہ نظر سے اور نظریاتی نقطہ نظر سے، تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی شخص ان گفتگووں میں حصہ لے تو وہ بھی کسی حد تک مطمئن ہو، اور جو لوگ متخصص نہیں ہیں، عام مزاج رکھتے ہیں، تعلیمی تقاضے الگ ہوتے ہیں اور عملی تقاضے الگ ہوتے ہیں، تو جو لوگ صرف عملی تقاضوں سے سروکار رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ مواد ان کی توازو کے لیے موجود رہے. ویسے یہ اصل اصیل، یہ بنیاد ہمیشہ ذہنوں میں رہے، جو مقرر بارہا میں نے عرض کی ہے آپ کے سامنے کہ علم و عمل میں تفکیک واقعاً ممکن نہیں ہے. علم و عمل دو چیزیں نہیں ہیں. اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ علم نہیں ہے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ عمل نہیں ہے. یہ بعض حضرات کے لیے بات ذرا سا بہت غور طلب ہوگی کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ برسبیل عموم و اطلاق، یا جسے کہتے ہیں کہ نفی جنس کے عنوان سے ہم کہہ رہے ہیں لا نفی جنس، لا علم لمن لا عمل له. اگر عمل نہیں ہے تو علم ہوگا ہی نہیں، وہ علم نہیں ہے، فریب دانش ہے. عالم ہونے کا کی خوش فہمی ہے اگر عمل نہیں ہے. اور اسی طرح عمل کی حقیقت یہ ہے، حقیقت عمل یہ ہے کہ وہ علم پر استوار ہو. اگر علم کے بغیر عمل میں وہ عمل وجود میں آ رہا ہے تو وہ عبث ہو سکتی ہے حرکت، عمل نہیں ہو سکتی. یہ بہت اہم ایک اصول زندگی کا سمجھ لیجئے. ہاں، کوئی بھی حرکت ہماری بغیر علمی بنیاد کے ہوگی تو وہ حرکت معتبر نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی علم اگر اس کے نتیجے میں عمل سامنے نہیں آتا ہے تو وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں. अब इस पे ज़ाहिर दरवाजे खुल जाएंगे बहस के, सवालात उठेंगे, लेकिन इन सवालात पर हम लोग गौर करते रहेंगे। यहीं पर बल्कि एक चीज़ अर्ज़ कर दें, फ़ारबी ने, फ़ारबी एक बहुत बड़ा नाम है तारीख़ इल्म व हिकमत का, फ़ारबी ने एक मकाम पे ये बात कही है कि आलिम, किसी भी इल्म का आलिम, उसमें क्या शराइत होनी चाहिए। जैसे आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं इल्म फ़ुतूहत या इल्म अखलाक, कुछ दिनों के बाद हम कहेंगे हम इल्म अखलाक के आलिम हैं मसलन, वैसे खुद ना कहें कभी भी तो बेहतर, दूसरे कहें कि आलिम, खुद नहीं दे दया करना चाहिए। लेकिन आलिम एक परफेक्शन कि हम इस इल्म में परफेक्शन की मंजिल पर पहुँचे हैं। अब यहाँ भी एक मसला है कि किसी भी इल्म में परफेक्शन की मंजिल कभी नहीं आ सकती, ये एक अलग बहस है। लेकिन निस्बी एतबार से, इजाफी एतबार से, रिलेटिवली, रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक मंजिल ऐसी आ जाए जहाँ इंसान को कुछ इत्मीनान हो जाए कि हाँ इस इल्म से हम वाकिफ़ हैं, तो उसके लिए आलिम ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आलिम में चार शराइत होनी चाहिए। पहली शर्त यह है फ़ारबी के नुक्ते नज़र से कि वो उस इल्म के उसूल का इहाता रखता, उसूल इल्म पर मुकम्मल दस्तरस, इहाता, यानी पूरा इल्म उसकी हथेली में हो। जैसे आप अपनी हथेली की उंगलियों को, इसकी पोरों को गिन सकते हैं, इस तरह उस इल्म के मबाहिस और मसाइल और अबवाब आपके सामने हो, और उसके तमाम फुरू जिन उसूल की तरफ पलटते हैं वो उसूल पर आपको इहाता, हर जगह ये होता है ना, फुरू उसूल की तरफ पलटते हैं उस पर इहाता हो, तो उसूल में इहाता, ये एक शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि उन उसूल के को बयान करने की उसे कुदरत हो, हुस्न ताबीर, हुस्न ताबीर जो सीखा है वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके। अगर डिलीवरी नहीं है, अगर बयान नहीं है, उस इल्म को पूरी तरह से आप मुंतकिल नहीं कर सकते, तो आलिम नहीं है। यानी बयान की कुव्वत, जो इल्म आपने हासिल किया है वो इल्म आप दूसरे तक मुंतकिल करने की कुदरत और अहलियत और सलाहियत बिलफेल रखते हो, बिलफेल आप बयान कर सकें जो आपने सीखा, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि उसके खारिजी और दाखिली तमाम लवाजिम से वाकिफ हों और उसे पूरा करते हों। और चौथी शर्त यह है, हर इल्म पर कुछ ना कुछ एतराज़ात वारिद होते हैं, शकूक, शुभात, एतराज़ात, उस जो आपने इल्म हासिल किया है उस इल्म पर वारिद होने वाले एतराज़ात का आप जवाब दे सकें, दिफा कर सकें, डिफेंड कर सकें। अगर ये चार खसूसियतें पाई जाती हैं तो आप हैं आलिम, वरना उस इल्म के आलिम नहीं कहलाए। जैसे कोई फकीह हो तो फकीह इल्म फिक्र का आलिम तब कहलाएगा जब उसूल फिक्र पर उसे दस्तरस हो, उसकी मुट्ठी में हो, फिर वो उसे बयान करने की कुदरत रखता हो, उसके दाखिली और खारिजी लवाजिम से और तकाज़ों से आशना हो और उसे पूरा करता। और आखिरी शर्त यह कि फ़िक्र पर जो एतराज़ात होते हों उसका जवाब दे सके, दिफा कर सके, डिफेंड कर सके। हत्ता कि अब रस्मी तौर पर सही, लेकिन पीएचडी जो लोग लिखते हैं या कोई भी थीसिस लिखते हैं तो उन्हें डिग्री यूं ही नहीं अवार्ड होती है, वो फिर बाद में आपने लिखी, मेहनत की, तहरीर लिख दी, आपने किताब लिख दी, अब आपने सबमिट कर दी, और उस पर कई एक्सपर्ट्स की राय भी आ गई। आखिर में क्या होता है, उसमें क्या कहते हैं अपनी थीसिस डिफेंड के लिए आगे? वो पूछेंगे आपसे, सवालात करेंगे, इतराजात करेंगे, आप जवाब दीजिए। अब चाहे ये रस्मन होता हो, एक रस्म हो गई है यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन ये है, वाज़े है। तो अब इल्म अखलाक है मसलन, तो इसके उसूल पर हमें इहाता तो हो जाए इन मजलिसों में बैठकर, और फिर हम ये चाहेंगे कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक जो सीखे वो बयान कर सके, और बयान करने के लिए किसी मदरसे के तालिब इल्म की ज़रूरत नहीं है, आपका घर। पहले खुद आपकी ज़ात, आपका नफ्स, खुद बैठकर अपने नफ्स को दर्स दें, जो सुन रहे हैं वो खुद अपनी ज़ात को सुनाएं, हदीसे नफ्स बना लें इन गुफ्तगुओं को, अपने आप से बातें करें, फिर अपने बीवी बच्चों से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने हलक़े में से बयान करें, और इसके तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करें, और साथ में इसके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो भी अभी आएंगे इंशाअल्लाह। मसलन अब यहीं से गुफ्तगू शुरू भी हो सकती है, मिसाल से, क्योंकि मतालिब की तरतीब जो है वो अगर अहाते में हो कोई बात, तो उसे मुनासिब तरीक़े से तरतीब को बदला जा सकता है, और आखिर से बात शुरू करके अव्वल तक पहुंचा जा सकता है। एक चीज़ है जो इल्म अखलाक के ताल्लुक से एतराज़ के तौर पे भी सामने आती है, और बुनियादी मबाहिस में भी सामने आती है। उमूमन ये याद रखिए कि उमूमन नफ्स इंसानी अखलाक या हुस्न अखलाक की तरफ रागिब होता है, उसे पसंद करता है, और उसे सीखने और सिखाने की तरगीब पाई जाती है उमूमन। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इस इल्म को बिल्कुल बेकार समझते हैं, और वो भी फिलोसोफर्स कहलाते हैं, अफसोस के साथ। उनके नामों के साथ में हकीम और फलसफी लिखा जाता है, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स। वो कहते हैं जो जो है वो है, बदल नहीं सकता। जब बदल नहीं सकता तो ये इल्म अखलाक पढ़ाना और सिखाना और बरतना ये किस लिए? नीम का पेड़ नीम ही का रहेगा, उसके सामने आम के औसाफ लाख बयान कीजिए, उस पेड़ में आम तो नहीं लगेगा, निमकोली ही लगेगी। ये बड़ा एतराज़ है, और मुख्तलिफ ताबीरात, मुख्तलिफ उनवानात से ये एतराज़ किया गया है, और काफ़ी कुछ इस पे लिखा गया कि क्या वाकई इंसान की तबीयत तगैर पज़ीर है, तब्दीली कबूल करती है, इंसान बदल सकता है, क्या शकी सईद हो सकता है, क्या सईद शकी हो सकता है? अगर किसी की तबीयत में शकावत है तो क्या वो शकावत मिट सकती है और उसमें अंदर सआदत पैदा हो सकती है? ये बहस है, और ये बहस बहुत से हजरात ने मजहबी जाविये से भी की है, जो लोग जबर के कायल हैं, मुतलकन जो जबर के कायल हैं, और जो मजहबी नुक्ते नज़र से जबर के कायल नहीं हैं, उन्होंने भी ये बहसें की हैं। बहरहाल अब ये उन्वान मैंने ज़िक्र कर दिया, जवाब हमारा सादा तौर पर यह है कि कतई तौर पर इंसान अगर अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो, अगर ख़ुद अपने बारे में गौर करे, तो वो देखेगा कि बहुत से मुआमलात में वो इख्तियार रखता है, और बहुत से मुआमलात में वो इख्तियार नहीं रखता। इसके मानी ही ये हैं कि इंसान न मुकम्मल तौर पर मजबूर है, न मुकम्मल तौर पर मुख्तार। अमरुन बैना अमरैन, हर इंसान, फलसफा, हिकमत, ये सब अलग रही बात, फितरी तौर पर इंसान اپنی ذات میں غور کرے تو دیکھے گا کہ بہت سی چیزوں میں وہ اختیار محسوس کر ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. اور اصلاً انسان کے پاس جو عقل ہے، یہ عقل کا وجود دلیل ہے کہ انسان مختار ہے. عقل کا وجود، یہ عقل جو بعض چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے اور بعض چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی، یہ عقل کا وجود اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان مختار ہے. دوسرے ارادے کا وجود، ارادہ عقل سے مختلف ایک حقیقت ہے. ارادہ، یہ ارادے کا وجود بتاتا ہے کہ انسان مختار ہے. اب یہاں پہ بحث ہے طلب اور ارادے کی، جو فقہا نے علم اصول فقہ میں بھی کی ہے اور فلاسفہ نے بھی کی ہے، کہ مقدمات طلب، شوق اور اشتیاق، کیا یہ سب انسان کے لیے اختیاری ہے یا اختیاری نہیں ہے. یہاں بہت بحث ہے. اگر اس بحث کا دروازہ کھولیں گے تو یہ 14 نشستیں اور مجلسیں کافی نہیں ہوں گی. لیکن اس وقت اسی حد تک میں سمجھتا ہوں یہ بات مقنع ہے، قانع کنندہ ہے. یعنی یہ بات آپ کسی سے کہیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا. یہ بات اگر آپ کسی کے سامنے بھی کہیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو عقل ہے اور آپ اپنے نفس پر غور کریں، آپ خود غور کریں کہ آپ اپنے کو مجبور پاتے ہیں، مطلقاً مجبور محض ہیں یا مختار کل ہیں. تو کہے گا نہ میں مختار کل ہوں نہ مجبور محض ہوں. یہی بات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. جب اسلامی علم کلام میں یہ بحث بہت زیادہ گرم تھی، جبر و تفویض کی بحث، تو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، نہ جبر مطلق ہے اور نہ تفویض کامل ہے، بلکہ امر ان دونوں امروں کے درمیان، یہ حد وسط. تو بہرحال علم اخلاق پر جب بھی کوئی اعتراض کرے کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں اور کس لیے غور کر رہے ہیں، جو سرنوشت لکھی جانی تھی وہ لکھی جا چکی ہے، جو تقدیر لکھی جانی تھی وہ لکھی جا چکی ہے، جو بننا تھا آپ کو وہ رحم مادر ہی میں آپ بن چکے ہیں. اگر وہاں شقی بن گئے ہیں تو اب آپ سعید نہیں بن سکتے، اگر وہاں سعید بن چکے ہیں تو اب آپ شقی نہیں بن سکتے. یہ میں ریفر کر رہا ہوں ایک بڑی بحث کی طرف جو بعض محدثین اور بعض علم کلام کے ماہرین کے درمیان ہے، اور اس کے لیے وہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سہارا لیتے ہیں. تو بہرحال اس کا جواب ہے تفصیلی. اجمالی جواب یہی ہے کہ بھئی جو چیز سامنے ہو، میں آپ سے پوچھوں میرے ان ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں، کیا سوچنے کی بات ہے؟ جو چیز سامنے ہو اس کے لیے دلیل نہیں تلاش کی جاتی. ہم اپنے کو پا رہے ہیں بہت سے معاملات میں مختار، اور ہم اپنے کو پا رہے ہیں بہت سے معاملات میں مجبور. تو یہی ہماری حقیقت ہے. جن چیزوں میں ہم مختار ہیں اس میں ہمیں اپنے ارادے کو اور اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اس سلیقے کی طلب ہے جس کا نام علم اخلاق ہے. ہمیں اپنا اخلاق کس لیے درست کرنا ہے؟ تاکہ جو ہمارے ارادی افعال ہیں، جو چیزیں ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں، کم سے کم وہ ہم سلیقے سے کریں. زینت زندگی ہے اخلاق. زندگی بسر کرنی ہے خوبصورتی سے، یہ زندگی کی خوبصورتی کہاں ہے؟ علم اخلاق میں. زندگی بھدے طریقے سے وہ گزارنی ہے، या ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजारनी है। अब ज़िंदगी की खूबसूरती कहाँ मालूम होगी? ज़िंदगी की खूबसूरती, जिस्म की खूबसूरती नहीं, इमारत की खूबसूरती नहीं, मकान की खूबसूरती नहीं, मकीन की खूबसूरती, बदन की खूबसूरती नहीं, नफ्स की खूबसूरती, जहन की खूबसूरती, ये खूबसूरती, ये ज़ेबो ज़ीनत, ये इल्म अख़लाक़। तो बहरहाल इसी गुफ्तगू में मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस्तिंबात और इस्तिंताज करना चाहे, नतीजा अख्ज़ करना चाहे, तो जो मंतिकी उलमा ने रूस थमानिया का उन्वान क़ायम किया है कि किसी भी इल्म को शुरू करने से पहले मुअल्लिम को या मुदर्रिस को या तालिब इल्म को तीन चीज़ें बता देनी चाहिए या जान लेनी चाहिए, आठ चीज़ें, रूस थमानिया, आठ चीज़ें जान लेनी चाहिए। उन आठ चीज़ों में सबसे पहले है नाम, देखिए ना, ये इसे कहते हैं तालीमी तरीक़ा, मेथड, पैटर्न सीखने और सिखाने का, कि किसी भी इल्म या फ़न को उसके कुछ सिरे आपके हाथ में दे दिए जाएं, हैं कि कहाँ से दाखिल होना है। हर इल्म अपनी जगह एक बहुत बड़ा शहर है, मुल्क है, एक जहान है, जहाने मानी। इस जहाने मानी के लिए लफ्ज़ शहर इस्तेमाल कर लीजिए आप। हर शहर में दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा और एक रास्ता चाहिए। ठीक है, मुमकिन है कि आप किसी शहर में दाखिल, किसी शहर में, किसी मुल्क में दाखिल होने के लिए आप समंदर के रास्ते से जाएं, आप सहरा के रास्ते से जाएं, आप हवाई रास्ते से जाएं, आप रेलगाड़ी से जाएं, आप बस से जाएं, लेकिन अगर आप सही सरहदों से दाखिल होंगे तो उस मुल्क की पूरी तरह सैर कर सकेंगे। और ख़ुदा न खास्ता अगर आपने सही रास्तों, सही सरहदों से एंटर नहीं हुए तो गिरफ़्तार करके किसी कैदखाने में डाल दिए जाएंगे। तो फिर उस मुल्क की सैर का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उलूम, कोई भी इल्म, ये एक शहर है। मैंने कहा गिरफ्तार करके कैद में डाल दिए जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि गिरफ्तार किए जाएं, खुद इंसान अपनी थकन से गिरफ्तार हो जाता है, रास्ते नहीं मालूम है, बेराहा चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जस्तजू के पांव टूट जाएंगे और मंजिल हाथ से निकल जाएगी। इसलिए किसी भी शहर या मुल्क में दाखिल होने के लिए उन्हीं सरहदों से दाखिल हों जो उसकी रस्मी सरहदें हैं। इसीलिए हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका दर। तो मुमकिन नहीं है कि कोई उलूम नबूवत, उलूम कुरान, उलूम ईमान, उलूम इस्लाम तक पहुंच सके बग़ैर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चुनांचे इल्म अख़लाक़ में भी आप देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने इल्म अख़लाक़ हैं। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, लेकिन इस शहर इल्म अखलाक का दर भी कौन है? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं एक महसूस मिसाल तारीखी दे दूँ आपको, और इस मिसाल के ज़िम्न में बहुत सी अमली बातें भी आ जाएंगी। आप हजरात ये समझते हैं या कुछ हजरात ये समझते हैं, जो गुज़िश्ता मजलिस के बाद जो सवालात मुश्तक आए उससे ये अंदाज़ा हुआ कि उन्हें बस अमली नुस्खे चाहिए, अगर हमें गुस्सा आ रहा हो तो क्या करें? ये सब, या कोई और अखलाकी कमज़ोरी हो तो उसको फौरन हल कैसे करें? जैसे ये कि ये आबा है, अब कहीं से ये पारा पारा हो जाए, फट जाए, तो इसमें पैबंद कैसे लगाएं, रफू कैसे करें फौरन? इल्म अखलाक ये बताता है कि कबाए जामे रफू कैसे किया जाए, बिल्कुल बताता है। लेकिन हम एक इल्मी तरतीब से आगे बढ़ेंगे। हमने अर्ज़ किया कि हम चाहेंगे कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों पूरे होते रहे। उमूमन जब अखलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो लोग बस ये समझते हैं कि इंसान को नर्म खू होना चाहिए, हर एक से नरमी से गुफ्तगू करे, हर एक से मुस्कुरा के गुफ्तगू करे, हर एक से तवाज़ो से गुफ्तगू करे, इनकसार खाक सारी से गुफ्तगू करे। बेशक ये सब चीज़ें हुस्न अखलाक हैं, लेकिन क्या गुस्से की इल्म अखलाक में कोई जगह है ही नहीं? ऐसा नहीं है। क्या सख्ती की इल्म अखलाक में कोई जगह नहीं है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कहाँ है और कहाँ नहीं, यही इल्म अखलाक बताता है। अगर इल्म अखलाक में गुस्से की और सख्ती की कोई गुंजाइश ही ना हो तो इल्म अखलाक अधूरा रह जाएगा। इसलिए कि विजदानन, फिर हम कहेंगे विजदानन, वजूदी तौर पर हम अपने अंदर गुस्सा पाते हैं, बहुत सी चीज़ों पर गुस्सा आ जाता है। लाते हैं आप या आ जाता है? आ जाता है। आ जाता है कि मानी ये है कि आप के अख्तियार में नहीं है, आपके अंदर है वो चीज़। जैसे मोहब्बत बाजार से कहीं नहीं मिलती, ऐसे ही गुस्सा बाजार में थोड़ी बिकता है कि किसी ने मोहब्बत ज़्यादा ख़रीद ली और ज़खीरा कर ली अपने पास, किसी ने गुस्सा ख़रीद के ज़खीरा कर लिया अपने पास, ऐसा तो नहीं है। मोहब्बत का सरचश्मा भी आपके वजूद के अंदर है और गुस्सा भी आपके वजूद के अंदर है। अब इसी तवाज़ुन को, फितरी हकीकी तवाज़ुन को बाकी रखना है कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ आते हुए गुस्से को जब्त करना है, कहाँ गुस्सा, गुस्सा आ गया अब उसे जब्त करना है, कहाँ गुस्सा नहीं आया मगर दिखाना है। हाँ, ये तालीमी मनाहिज में है मसला। अब आजकल तो तालीमी मनाहिज में आप तालिबे इल्म पे गुस्सा कर ही नहीं सकते, और इसीलिए आप देखें कि तालिबे इल्म कैसे कैसे निकल रहे हैं। वो पुराने असातिज़ा खूब गुस्सा भी करते थे, खूब प्यार भी करते थे, खुदा की कसम। तालिबे इल्मों को अपनी औलाद की तरह तरबियत करते थे, तो मोहब्बत भी देते थे और गुस्सा भी करते थे। और देखिए कि कैसे कैसे उलमा और बुजुर्गान वजूद में आते थे। बहरहाल, तो अब ये कि इल्म अखलाक में या इल्म फुतुवत में जहाँ रहमत के तकाजे पूरे करने हैं, रहफत के तकाजे पूरे करने हैं, मोहब्बत के तकाजे पूरे करने हैं, वहीं गैज़ो गज़ब की भी अपनी एक जगह है। जहाँ नरम खुई से काम लेना है, वहीं कहीं कहीं पर सख्ती से भी काम लेना है। और इसीलिए ये ताबीर, ये इबारत हम तक पहुँची है और मोतबर सिलसिलों से पहुंची है कि फरमाया गया है अत्तवाज़ु मअल मुतवाज़िईन इबादा वत्तकब्बुरु मअल मुतकब्बिरीन इबादा। जो लोग खाकसारी से पेश आते हो तुमसे, तवाज़ु खाकसारी, नरमखुई, झुक के, बेनफसी से जो लोग तुम्हारे साथ पेश आए, उनसे उसी तरह बेनफसी से, खाकसारी से, तवाज़ो से, इनकसारी से, नर्म खुई से मिलना इबादत है। और इसके बरक्स वत्तकब्बुरु मअल मुतकब्बिरीन इबादा, और जो लोग तकब्बुर से पेश आते हो, उनके साथ तकब्बुर से पेश आना इबादत है। अल्लाह वैसे दुनिया में होता यह है कि अपना तकब्बुर इंसान नहीं देखता, दूसरे के तकब्बुर को याद रखता है। तो ये एक मिसाल थी कि ये बात फरमाई गई है, ये बात फरमाई गई है, ये तालीम दी गई है। तो इल्म अखलाक हो या इल्म फुतूवत हो, इसमें गुस्से की और सख्ती की भी अपनी जगह है। अब ये गुस्सा कितना किया जाए, कैसे किया जाए, किसके साथ किस तरह इजहार किया जाए, किस मौके पर किस तरह इजहार किया जाए, ये वो शख्स जानता है जो इस फन में कामिल हो, और जो कामिल नहीं है वो इस पर एतराज़ करने का हक नहीं रखता। अब ये बहुत बड़ा तारीखी वाकया, मैंने क्या कहा था, शहर इल्म अखलाक भी ذات گرامی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا بھی در کون ہے؟ ایک ہی در ہے، اس شہر کا ایک ہی در ہے، اس کا نام ہے علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ مباہلے کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، مباہلے میں نصارہ نجران نجران سے مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبوی میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے زرق برق لباس پہنے، وہ جس طرح کا سونے چاندی سے کہ زیورات، اور ظاہر ہے کہ سونا جو ہے وہ ہمارے ہاں حرام ہے مردوں پر، لیکن دوسرے حضرات سونے چاندی کا خوب استعمال کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، مرد سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، زنجیریں پہنتے ہیں، تو وہ جو کچھ پہن سکتے تھے، زرق برق لباس اور زیورات، وہ پہن کے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے یہ نبی ہیں اور با اخلاق ہیں اور اخلاق کے درجہ کمال پر فائز ہیں، یہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، کوئی اور اگر باب علم ہوتا تو جواب دیتا۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، حضور نے ایسا رویہ ان کے لیے کیوں اختیار کیا۔ ایک ہی بات سب کی سمجھ میں آئی، اگر یہ بات سمجھنی ہو کہ ایسا رویہ حضور نے کیوں اختیار کیا، تو علی ابن ابی طالب سے جا کے پوچھو، باب مدینہ العلم آئی، ان کے پاس آئے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، کہا ایسا ہے کہ یہ جو آپ سونے چاندی کے اور جواہرات کے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اور یہ شان و شوکت نہ دکھائیے، آپ جس لباس سفر میں آئے تھے اسی طرح خاکساری اور تواضع کے ساتھ، سادگی کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ جب وہ سادگی کے ساتھ آئے تو حضور نے کمال اخلاق کا مظاہرہ کیا، اٹھ کے استقبال کیا، بلایا، اپنی مسجد میں انہیں بٹھایا، اور انہیں اپنی مسجد میں ان کو اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی بھی اجازت دی۔ تو اس پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ایک طرح سے تربیت کی آنے والوں کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ کس وقت کس طرح سے تربیت کرنی ہے، انہوں نے یہی طریقہ اختیار فرمایا، پہلے غیظ کا یا غضب کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب وہ تواضع و خاکساری کے ساتھ آئے تو پھر آپ نے ان کا استقبال کیا اپنے کمال اخلاق کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے سب کے ذہنوں میں رہے کہ زندگی میں نرم خوئی اچھی چیز ہے، وہاں کہیں کہیں سختی بھی برتنی پڑتی ہے۔ اب میں ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے وقت गुज़र गया अच्छा खासा और बहस अभी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन इन्हीं मतालिब में एक लिहाज से बहस काफ़ी आगे बढ़ गई है। मैं तेज़ी से ताकि वो तालीमी तकाजे पूरे हो जाएं ये अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई पूछे कि भाई इस इल्म का नाम क्या है, ये जो हुकमा ने मंतिक़ में रुऊस थमानिया एक उन्वान कायम किया है, रुऊस थमानिया यानी गोया मतलब तक पहुंचने के 8 सिरे हैं, ये सिरे आपको थमा देंगे हाथ में, ये सिरा पकड़ के आगे बढ़ते चले जाइए। तो उसमें यह कि किसी इल्म का इहाता कर लें इस तरह से, पहले ज़ाहरी शक्ली इहाता खारिजी, कि उस इल्म का नाम क्या है, इल्म अखलाक या इल्म फुतूहत लिख लें आप ब्रैकेट में। अब ज़ाहिर है मैंने जो कुछ लिखा है पूरा मकाला तो यहाँ नहीं पढ़ सकता आपके सामने, तो इस तरह से गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि तकाजे पूरे हों। बस अब इल्म अखलाक इस नाम ही की अगर वजाहत करना जो गुज़िश्ता मजलिस में हो चुकी है कि एक है खल्क और एक है खुल्क, अखलाक इसी खुल्क या खुलक की जमा है, और यहाँ इल्म अखलाक इसमें आलम है इस इल्म के लिए। मैंने यहाँ लिखा है कि इल्म अखलाक इत्र हिकमत है, उलूम हिकमत है ना, इत्र अगर निकालें तमाम उलूम हिकमत का तो इल्म अखलाक है, और इत्र ही में खुशबू होती है, खुशबू ही जिंदगी में कशिश पैदा करती है। इत्र हिकमत है इल्म अखलाक। इसे आप ज़रा और मतीन अंदाज से, यानी ये एक शायराना ताबीर थी मसलन, आप ये भी कह सकते हैं कि इल्म अखलाक इल्म अकदार मानविया है, असल ये वैल्यूज़ का इल्म है, ये इल्म ही वो है जिसमें वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, इल्म अकदार व औसाफ, यानी ये है इल्म हमारे जिस्म व जान ही से मुतालिक, मगर यही जिस्म व जान यही वजूद सर्जरी का जो इल्म है जो एनाटॉमी है आप उसके माहिर यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, अब वो ये जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या ढूंढते हैं कि इल्म कहाँ पर है, सखावत कहाँ पर है, मोहब्बत कहाँ पर है, ये नहीं करते, इनका उनकी फील्ड इनके ऑपरेशन की टेबल पर जब आता है तो ये देखते हैं कि हड्डी मजबूत है कि कमज़ोर है, रगें अपनी जगह हैं कि नहीं है, रगों में खून बह रहा है कि नहीं, ढांचे का इल्म वो एक अलग इल्म है, वो एक अलग इल्म, फिजियोलॉजी वो एक अलग इल्म है, कितने उलूम हैं जो इंसान से मुताल्लिक हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि तकरीबन बेशतर उलूम वो हैं जो दरअसल ज़ात इंसानी से मुताल्लिक, इसीलिए कहा जाता है कि इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारी ज़ात कवी और मजबूत हो, ज़ात एलिवेट हो, नफ्स में कमाल पैदा हो, ज़ात की तकमील हो, अपनी ज़ात को मुकम्मल बनाने के लिए इल्म हासिल करो, न कि दूसरे के ऊपर रौब डालने के लिए। लोग उलूम हासिल करते हैं पैसे कमाने के लिए, जॉब ओरिएंटेड, अपने नफ्स को कामिल करना है, हर इल्म के हुसूल में पहली नियत यह होनी चाहिए कि हमें अपने इल्म अपने नफ्स को अपनी जात को दरजे कमाल तक पहुंचाना है, और इसमें सबसे बढ़कर जो इल्म काम आएगा वो इल्म अखलाक। तो ये औसाफ व अकदार का इल्म है, और ये औसाफ व अकदार पाए कहाँ जाते हैं, हवा में, खला में, सहरा में, दरिया में, औसाफ कहाँ पाए जाते हैं, चांद सितारों में पाए जाते हैं, औसाफ ज़ात इंसानी में पाए जाते हैं। तो बराह रास ये इल्म हमारी और आपकी ज़ात से मुताल्लिक है, खुद अपनी ज़ात को डिस्कवर करना है, कशफ करना है कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है, जो नहीं है वो कैसे पैदा हो सकता है, जो हद से ज़्यादा है वो हद में कैसे लाया जा सकता है। वो मेडिकल मिसाल है, वो छोटी सी चीज़ होती है थायराइड ग्लैंड्स हैं, अगर थायराइड ग्लैंड्स के जो एंजाइम्स और जो हार्मोन्स और सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो मालूम हुआ कि गोरा आदमी काला हो जाएगा, रंग बदल जाएगा, हैं, और पता नहीं क्या क्या तब्दीलियां जिस्म में आ जाएंगी। तो ये थायराइड का जिस्म में होना भी ज़रूरी है, निकाल के फेंक नहीं सकते, उसका हद में रहना भी ज़रूरी है। हद से ज़्यादा हुआ तो नुकसान, हद से कम हुआ तो नुकसान। पैंक्रियास हमारी बॉडी में है, पूरे बॉडी के शुगर को कंट्रोल करता है मसलन। अभी पैंक्रियास निकाल के काट के फेंक दीजिए, नहीं मुमकिन है। पैंक्रियास का रहना भी ज़रूरी है और उसका उसकी अपनी हद में रहना ज़रूरी है। इसी तरह तमाम औसाफ का हमारे वजूद में, हमारी ज़ात में रहना भी ज़रूरी है और उनका अपनी हद में रहना भी ज़रूरी है। ये चीज़ इल्म अख़लाक़ बताती है। तो मैंने जो ताबीर अख्तियार की मसलन समझने और समझाने के लिए कि इल्म अख़लाक़ क्या है, इल्म अकदार व औसाफ, इल्म औसाफ व अकदार। औसाफ वस्फ की जमा है, सिफत जो पाई जाती है। अकदार वैल्यूज़, अकदार हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरब अकदार की जगह क़ियम इस्तेमाल करते हैं। क़ीमा की जमा क़ियम, कीमत, क़ीमा यानी कीमत, कीमत की जमा क़ियम। अल-क़ियम अल-इंसानिया, इंसानी कदरें। तो ये इल्म अकदार मानविया, या आप इसे इल्म अखलाक इल्म फ़ज़ाइल और ख़साइस नफ़्स इंसानी कहें, ख़साइस नफ़्स इंसानी और फ़ज़ाइल नफ़्स इंसानी। हमारे नफ्स के फ़ज़ाइल क्या हैं और हमारे नफ्स के ख़साइस क्या, खसूसियतें क्या हैं जो हमारे नफ्स में पाई जाती हैं। यानी दरअसल अगर मैं ये कहूँ कि इल्म अखलाक तन्हा वो इल्म है जो इंसान को बहैसियत इंसान मुतालआ करता है। सर्जरी है, ये पहले अपनी छुरी किस पे आजमाते हैं, तेज करते हैं, जानवरों पे। इल्म अखलाक आप जानवरों पे नहीं आजमा सकते, ये आपको बराह रास नफ्स इंसानी को सामने रखना होगा और नफ्स इंसानी का मुतालआ करना, यह है इल्म अखलाक। और जब अखलाक अपनी बुलंदी पे पहुंचेगा, पूरे इल्म अखलाक का सफर जब तय हो जाएगा और उसमें कुछ और चीजें इजाफा होंगी, तब फुतूवत वजूद में आएगी। फुतूवत की वो मंजिल, ये लफ्ज फुतूवत भी कहां से आया है बता चुका हूं पहले, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला। लफ्ज़ फतह से फुतूवत है। तो बहरहाल ये ताबीरें हैं, वरना इल्म अखलाक नाम इल्म अखलाक है या इल्म फुतूवत है। अब दूसरा सवाल, ये पहला रूस थमानिया में से वो आठ जो सिरे हाथ में आने चाहिए उनमें से पहला सिरा क्या है कि इल्म का नाम, दूसरा क्या है, कहते हैं वाज़े इल्म कौन है, यानी इस इल्म को ईजाद किसने किया, इस इल्म को कशफ किसने किया, बानी कौन है इस इल्म का। अब ये बहस अक्सर उलूम के साथ है और लोग जिस तरह करते हैं, कहते हैं मसलन इल्म मंतिक के बानी का नाम बताया जाता है अरस्तू, या अरिस्टोटल वो है जिसने लॉजिक में सबसे पहले किताब लिखी। दरअसल वो इल्म मंतिक के कवानीन का वाज़ नहीं है, ये उसूल, ये प्रिंसिपल्स, ये लॉज, ये बायलॉज, ये जो कुछ भी आप पढ़ते हैं लॉजिक में, ये डिफिनीशंस, डिफिनीशंस उसने जाहिर है कि करने डिफाइन करने की कोशिश की है। दरअसल इल्म मंतिक इल्म नफ्स इंसानी का एक जुज़ है। नफ्स इंसानी में एक कुव्वत है जिसे कुव्वत आकिला या ज़हन कहते हैं। ये जहन बाजार में बिकता है कहीं, ये जहन तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आपको अता फरमाया, دستِ فیاضِ قدرت نے عطا کیا ہے اور مادرِ فطرت نے پروان چڑھایا ہے. تو یہ جو ذہن ہے آپ کا یہ آپ کے اندر ہے. ذہن کس طرح کام کرتا ہے؟ دو اور دو چار, کس طرح ذہن جوڑتا ہے؟ تین میں سے دو نکل گئے, کتنے بچے؟ ایک. یہ کس طرح ذہن کرتا ہے؟ ذہن کرتا ہے نا یہ سب کام. یہ ذہن کا مطالعہ دراصل نفس انسانی کی ایک قوت کا مطالعہ ہے. یہ مطالعہ ارسطو نے کیا اور جو کچھ اندر ہو رہا تھا اسے کاغذ پر لکھ دیا. تو وہ مکتشف ہے, اس نے اکتشاف کیا ہے, اس نے ڈسکور کیا ہے جو چیز پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھی. واضح ہے یہ بات. تو دراصل علم منطق صفحے جاں پر یا صفحے ذہن پر لکھی کس نے تھی؟ یہ علم لکھا کس نے تھا؟ کل کے مشیت نے. تو واضع تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالی, حق سبحانہ و تعالی واضع علم منطق ہے. اس کا اکتشاف کرنے والا ایک مغربی دنیا میں ارسطو ہے, لیکن کیا ہندوستان میں بھی ارسطو ہے؟ وہ حکما, وہ دانشور لوگ جنہوں نے ویداز کی تصنیف کی, اپنیشد کی تصنیف کی, اسمرتیوں کی تصنیف کی, وہ حضرت زرتشت جنہوں نے اوستا اور ژند اور پاژند کی تصنیف کی, وہ چین میں کنفیوشس اور ان کے علاوہ دوسرے, یہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف افراد ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے اور کشف کیا ہے. آپ صرف ایک شخص کے سر پہ صحرا نہیں باندھ سکتے. واضح ہے. جس طرح علم منطق ذہن انسانی میں ہے, ارسطو نے اس کا اکتشاف کیا, اسی طرح علم اخلاق پوری جان میں ہے, ذات انسانی میں علم اخلاق ہے. یعنی لوح جان پر کل کے قدرت سے حق سبحانہ و تعالی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے علم اخلاق. واضع علم اخلاق خدا ہے, اسی لیے وہی ہے جو کسی کو سند دے سکتا ہے انک لعلی خلق عظیم. ہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح مغربی دنیا میں یونان کے سلسلے سے جو حکمتیں پھیلیں اس میں علم منطق میں ارسطو کو فوقیت و سبقت حاصل ہے, اسی طرح کہتے ہیں کہ علم اخلاق کا سب سے پہلا بانی یا مصنف یا واضع سقراط ہے, سوکریٹس, یعنی ارسطو کے دادا. کس معاملے میں دادا؟ علمی سلسلہ نسب میں. سقراط شاگرد ہیں افلاطون کے, ارسطو شاگرد ہیں افلاطون کے, اور افلاطون شاگرد ہیں سقراط کے, سوکریٹس. سوکریٹس پلیٹو ارسطوٹل, ٹھیک ہے نا. تو سوکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چونکہ یہ کہا سب سے پہلے کہ علم فضیلت ہے اور جہل رذیلت ہے, اس لیے اس کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا علم اخلاق کا, اور اس کے تمام ڈائیلاگس اور مکالمے موجود ہیں. بہرحال یہ پھر میں عرض کروں گا کہ سقراط کا نام, افسوس یہ ہے کہ ہمارے مصنفین بھی یہ لکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں, واضع علم اخلاق می گویاند کے سقراط بود. نہیں بھائی, ارے بھائی وہ سقراط دنیا کے ایک گوشے میں, ایران میں خود زرتشت, حضرت زرتشت, اور ہندوستان میں جنہوں نے ویداز لکھی ہیں وہ لوگ علم اخلاق کے کس بلند ترین منزل پہ فائز تھے. چین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہیں یوں ہی ارشاد فرمایا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। देखिए हमेशा तंग नज़री, तंग नज़री तो सबसे बड़ा अखलाकी जुर्म है, यकचश्म नहीं होना चाहिए, तंग नज़री नहीं। चीन में एक जहान इल्म वहां था और है, हिंदुस्तान में एक सिलसिला था और है, ईरान में एक सिलसिला था और है, अरब में एक सिलसिला था और है, वो जो था उसे नजरों से हटाया गया है इंशाल्लाह। इस फकीर से आप वो सिलसिला जो गुम कर दिया है मुअर्रखीन ने वो भी डिस्कवर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और इस पूरे सिलसिले को शर्क से गर्ब और शमाल से जुनूब तक जो पहले से मौजूद था और मर रहा था और मिट रहा था, इसे दोबारा जिंदगी जिसने दी है वो शजरे तैयबे मोहम्मद वाले मोहम्मद नुज़ूल कुरान के साथ और बेअसत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम उलूम हकीकिया और उलूम असलिया और उलूम फितरिया, तमाम उलूम हर इल्म को जिंदगी मिली, चुनांचे इल्म अखलाक को। अब फिर इस दौर में हर शख्स बैठे और कहे कि इल्म अखलाक का वाज़े सुकरात, सुकरात का बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है सुकरात का। मैं एहतराम करता हूँ और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि सुकरात नबी खुदा हज़रत इदरीस के शागिर्दों में से थे, उनके बराह रास्त नहीं बल्कि उनके शागिर्दों के शागिर्दों में से थे। फ़ीथागोरस, ये पाइथागोरस वगैरह, ये सब का इल्म सिलसिले उलूम अंबिया से मुक्तबस है, सब ने वहाँ से इक्तिबास किया है, सब ने रोशनी वहीं से ली है, जैसे ये चांद सूरज से रोशनी लेता है, इसी तरह सब ने एक सर चश्मे से रोशनी ली है और वो उलूम अंबिया है। तो अब ये सवाल, बस ये बहस यहाँ पे रोकते हैं। रूह से थमानिया में से दो बातें हों, नाम इल्म अखलाक वाज़ेह है तो हक सुभानहू व तआला, लेकिन मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मुफक्किरीन, मुख्तलिफ मुअल्लिमीन अखलाक, मुख्तलिफ बुज़ुर्गों ने इसका इक्तिशाफ किया और लोगों के सामने मुअल्लिम अखलाक के तौर पर सामने आए। हमारे लिए सबसे बड़ा मुअल्लिम अखलाक ज़ाते गिरामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद मतन अखलाक हमारे लिए कुरान है, मुअल्लिम अखलाक हमारे लिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और तरबियत करने वाले माशाल्लाह मासूमीन अलैहिस्सलाम अइम्मे अलैहिस्सलाम। वक्त है अभी कुछ और या अब ये वाक़ये के बाद खुद इल्म मंतिक में जो रूह से थमानिया उसकी तरतीब में मुझे हमेशा कलाम रहा है कि किस तरह वो एक दो तीन तरतीब कैसे है। अब एक सवाल ये भी होता है कि इल्म, किसी इल्म का रुतबा क्या है, यानी रुतबे से मुराद रुतबे का तायुन, इसके लिए खुद खुद मुस्तकिल एक लेक्चर चाहिए कि किसी इल्म का सिलसिले उलूम में, उलूम बहुत से हैं ना, उलूम बहुत से, तो किस इल्म को किस जगह रखा जाए, किस जगह रखा जाए के मानी ये है कि फिर उससे पहले क्या क्या है और उसके बाद क्या क्या है, या उसके बाद क्या है, क्या क्या तो नहीं समझ में आएगा, क्या है वाज़े है। मसलन अच्छा, ये रुतबे का तायुन कैसे किया जा सकता है, ये तफसील से बहस तलब बात है, ये अभी हर्फ आखिर किसी ने इस मौजू पर लिखा भी नहीं है, जो शारहीन है कि किसी इल्म का रुतबा मुअय्यन कैसे करते हैं। ज़ाहिर रुतबा मुअय्यन करने के लिए भी कई जाविये हैं, तो किस जाविये से मुअय्यन किया जाए ये एक तफसीली बहस है। जहाँ जहाँ मैं कह दूँ तफसीली बहस है वहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, और ये याद रखिएगा कि आप में से परवरदिगार जिसे भी तौफीक अता फरमाए वो उस इशू पर, उस सवाल पर गौर करता रहे और परवरदिगार से तलब करें मुमकिन है वो उसी एक इशू पर पूरी थीसिस लिख ले, है कि नहीं। परवरदिगार अता फरमाए। बहुत से ऐसे सवालात हैं, देखिए ना थीसिस आप लिखते हैं, किसी एक मसले पे पूरी किताब लिखी जा सकती है और लिखी जाती है। तो उलूम का जो शजरा है, बिज़र क्या है, बीज क्या है, तुख्म क्या है, यही तयशुदा है क्या? ऑलरेडी डिसाइडेड, मालूम है? नीम का पेड़ बोना होगा तो नीम कौली बो देंगे, आम का पेड़ पौधा बोना होगा तो आम की कुठली बो देंगे। इल्म का बिज़र बीज क्या है, कहाँ से शुरू होगी बात? बस अभी सवाल कर रहा हूँ मैं, खूब थकाइएगा अपने जहन को। अच्छा जब बीज ही की खबर नहीं है तो फिर शाख दर शाख, हम तो फैला हुआ शजरे सायादार इल्म देख रहे हैं अपनी आंखों से, उलूम की फ़नून की शाखें फैली हुई हैं और उन शाखों के साए में ज़िंदगी बसर हो रही है, गुज़र रही है। तो अब ये तय करना कि किस इल्म का रुतबा क्या है, ये फिक्री और मंतिकी और हकीमाना मेहनत चाहिए इसके लिए, ये ख़ुद एक मुस्तकिल थीसिस का मौजू। लेकिन अब मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया ना थीसिस का मौजू, अब शौक़ आप में बेदार हो ताकि आप कुछ करें, इस वक्त जवाब मुझसे एक सादा सा सुन लीजिए ताकि बात आगे बढ़े। कभी क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ रखी जाए, जब आप बड़ी लंबी चौड़ी इमारत बना रहे हों तो बाकायदा सीढ़ी तो बाद में बनती है, पहले क्या बन जाता है? वो लकड़ी का या लोहे का जी, आप उसका सहारा लेके ऊपर चले जाते हैं, वो सीढ़ियाँ बाद में बनती रहती। तो अभी कोई एक ऐसी चीज़ सामने हम रख लें कि बात आगे बढ़ जाए। इल्म अखलाक के लिए याद रखिए कि ये ताबीर इस पर जेब देती है, हुवल अव्वल हुवल आखिर। इल्म अखलाक में गुफ्तगू शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं है कि आप पहले अरबी पढ़ लें, पहले मंतिक पढ़ लें, जैसे किसी को फ़कीह बनना है, मुज्तहिद बनना है, फ़कीह मुज्तहिद बनना है तो ज़ाहिर है कहेंगे पहले अरबी ज़बान पढ़िए। पहली चीज़ बिज़र बीज, बनना क्या है, मुज्तहिद या फ़कीह। जिन लोगों को लफ्ज़ मुज्तहिद से चिढ़ है वो फ़कीह समझें, फ़कीह बनना है, फ़कीह यानी इल्म फ़िक्ह तफ़क्कुह फ़िद्दीन। फ़कीह बनने के लिए क्या शर्त है पहली? अरबी ज़बान। बीज वो है अरबी ज़बान के बाद मंतिक, मंतिक के बाद उसूल फ़िक्ह, उसूल फ़िक्ह के साथ साथ इल्म रिजाल, इल्म तफसीर। इल्म तफसीर नहीं आएगी तो आयात अहकाम से मुतालिक बहस कैसे चलेगी? आयात अहकाम कहाँ है, कुरान में है कि नहीं? आप कह के गुजर जाएंगे तफसीर की ज़रूरत नहीं है। आयात अहकाम कहाँ है, आयात अहकाम समझेंगे कैसे? उसी आयत को समझने का नाम ही तो तफसीर है, है? तो साथ साथ रिजाल, तफसीर, गरीबुल हदीस, गरीबुल कुरान, ये सब उलूम है। उसके बाद आप हुक्म साबित करने के काबिल होंगे तो कहलाएंगे फ़कीह। एक सिलसिला है। इल्म अखलाक शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं है, अपने सहीफ़े जान को सामने रखने की शर्त है, किताब-ए-ज़ात। हुवल अव्वल हुवल आखिर। हुवल आखिर क्यों कह रहा हूँ? कहीं से भी शुरू कीजिए और चाहे आप फ़कीह बन जाएं, मुज्तहिद बन जाएं, मर्जे तकलीद बन जाएं, मगर फिर भी आपको इल्म अखलाक पर गौर करते रहने की ज़रूरत है। आखिर आखिर तक आपको इल्म अखलाक पर गौर करने की भी ज़रूरत है और अमल करने की भी ज़रूरत है कि आपके दरवाज़े से किसी को धक्का दे के दूर ना किया जाए। मालूम फ़कीह साहब कमरे में बैठे हुए, बाहर कुछ लोग बैठे हैं, मोमिनीन आए ज़्यारत के लिए और मोमिनीन को इस तरह धक्का दिया गया कि बेचारे सड़क पे गिर गए। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई ख़ास वाक़े की तरफ इशारा नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ। तो इल्म अखलाक हुवल अव्वल हुवल आखिर। डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, माँ बाप हो, मुज्तहिद हो, फ़कीह हो, मुदर्रिस हो, मुअल्लिम हो, कोई भी हो,
ذاکر ہو، خطیب ہو، کسی بھی رتبے میں، اس کو اپنے رتبے کے مطابق علم اخلاق پہ غور کرنے اور علم اخلاق کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت رہے گی. تو اس رتبے کے سوال کو یہاں پر اس اعتبار سے سمجھیے کہ هو الاول هو الاخر، علم اخلاق سے بات شروع ہوگی اگر ہم انسان ہیں، اور علم اخلاق پہ بات ختم ہوگی اگر ہم انسان ہیں. میرا خیال ہے آج اسی قدر گفتگو پہ ہم روک دیتے ہیں، ابھی روح سے ثمانیہ پورے نہیں ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ چونکہ بحثیں آ رہی ہیں، میں صرف ایک دو تین کر کے گنا تو نہیں رہا ہوں نا، تو اس میں بحثیں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے اسی طرح 14 مجلسوں میں ہم تقریباً تمام مباحث سمیٹ لیں گے انشاءاللہ. جزئیات و تفصیلات پر احاطہ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اصول آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اس طرح جیسے آپ کی ہتھیلی میں نشانات آپ کے سامنے ہیں، اس طرح علم اخلاق اور علم فتوت کے رؤوس اور مطالب، رؤوس مطالب اور اصول مطالب آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.